कि प्रेममयी से बात करना चाहते हैं, ये उन लोगों का गर्व होता है। इसलिए बहुत खुश होदास महाराज जी उसी प्रकार से उनका वैराग्य, और ऐसे ही वो शास्त्रों के मूर्तिमान विग्रह भी थे, इसलिए जो जो उन्होंने किया शास्त्र उनका अनुसरण करता है, हम लोगों को इसीलिए उनका अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा देखा। तो हम देखते हैं कि जब कैसे चले गए अंधे होते, तो एक बार नवदीप में कोई प्राण की प्राण गोपाल गोस्वामी जी भाषण दे रहे थे, भाषण में प्रवचन श्रीमद भागवत के ऊपर में रास पंचाध्यायी के ऊपर में, और वो श्लोक आया, क्या आया वो तीव्र बृहताप धात धूतो अशुभा अशुभ ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेषा क्षीण मंगला, इसी के व्याख्या कर रहे थे। वो कह रहे थे ये गोपियों ने जिनको पतियों ने उनको घर में बंद कर दिया, उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया और कृष्ण से आगे जाकर के मिल गई। कजे ठाकुर मोसा की गोस्वामी जी अपना व्याख्या इतना भूल होते गोपीराव कने से सॉरी छड़े नहीं कोसा जे सॉरी छड़ा एकु सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी और विशेष कर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तो टीका देखें ए रकम अपराध करबें ना, तक हाथ जोड़े दाड़िए बोलें जैसे प्रभु एक व्याख्या अपनी कर, तक सरल सहज भाव से व्याख्या कर दिल। ओखने कृष्ण विरह तीव्रतापे नार धूताशुभा अशुभ तार धूत हो कि अशुभ धूत हो किछु किछु तहत कषाय छिल ताजा नित्य सिद्धा संग है नहीं, उनका संग नहीं हुआ था। वो कुछ जो कषाय था गोपी घर में गोपियों के गृह में उनके गर्भ से जन्म ग्रहण किया है, उनका क्या अशुभ रह सकता है। कृष्ण में अभी वैसा गोपियों में जो भाव होता है वो उन्नत उज्ज्वल रस का भाव अभी कृष्ण के प्रति पार्थिय भाव ये नहीं था, थोड़ी सी कमी उनके पतियों से उनका संग कुछ हुआ था, उनके बच्चे भी हो गए थे, इसलिए वह धूप वह अशुभ जो था पतियों का संग इत्यादि और कुछ पति ज्ञान अपने पति में ये दूर हो गया। नित्य सिद्धा गोपियों का काय विवाह का ललिता विचार ये सब भाव नहीं था, उनका कृष्ण में वही परकीय भाव शुद्ध विशेष भाव था, कृष्ण हमारे प्रिय पति, इसका अतिरिक्त अपने पतियों में ये सब का भाव नहीं था, ये दूर हो गया। और क्षीण मंगला उनका सुख दूर हो गया, उनका जो स्नेह था जो भजन करता है उसके प्रति सबका स्नेह हो गया था, उनके पतियों का उनके प्रति स्नेह था, ये सब चीजें दूर हो गई। और दूर होते ही कृष्ण में कृष्ण लीला में वो सब एकदम पहुंच गई। कैसे पहुंची, जब आम जैसे जैसे पकता जाता है और उसका आस्वादक उसका आस्वादन करता जाता है, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों कुछ तरसों कुछ वर्षों, इस तरह से इसी तरह से इन चीजों को समझना चाहिए। तो उन्होंने बतलाया और सभी लोग चमत्कृत हुए, जैसे बाबा जी महाराज इतने विद्वान और भागवत के रसिक विद्वान हैं, इन चीजों को समझना चाहिए। गौरकुशोदास महाराज साधारण आदमी नहीं थे, उनका दो स्वरूप देखना चाहिए, एक नित्य सिद्ध और एक भाव भक्त साधक के रूप में देखो। वो हमारे लिए है वो, उनकी शिक्षा हम लोगों को देने के लिए वो साधक भावुक भक्त भाव भक्त के अनुसार में वो कुछ साधना का ये प्रदर्शन कर अभी नहीं कर रहे हैं जैसे बिल्लू मंगल का था, किंतु वो साधक थे। हमारे गुरु परंपरा में एक सिद्ध प्रणाली माने मुक्त पुरुषों की, जैसे माधवेंद्र पुरीपाद ईश्वर पुरीपाद, इसके बाद में नित्यानंद प्रभु। इसके बाद में अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी पास थे चैतन्य महाप्रभु। इनमें कौन असिद्ध है, कौन साधक है, इनमें बतलाओ तो, कोई है साधक? इस परंपरा में कोई साधक नहीं, साधक का भाव कुछ नहीं बन देता। चैतन्य महाप्रभु साधक है न नित्यानंद प्रभु साधक है न अद्वैताचार्य साधक है। अब उसके बाद में आए कौन, स्वरूप दामोदर और स्वरूप सनातन का नाम दिया, उनका नाम उसी में रख लो। किंतु ऊपर से आया किसका, स्वरूप दामोदर आया है। अच्छा बतलाओ तो इनके गुरु कौन थे, कौन गुरु थे, कोई बतला सकता है? कहां से संन्यास लिया, वो हमारी गौड़ीय परंपरा में कहां से आ गए, कैसे आ गए, इसे विचार करो। यही सिद्ध प्रणाली है, इसी को कहते हैं भागवत परंपरा। महाप्रभु जी ने उन लोगों का अपना पी, ये हैं कौन, स्वरूपत दामोदर जी हैं, ये परंपरा में आए। ये यद्यपि ऊपर से हमारे संप्रदाय में शिष्य परंपरा में है, कोई शिष्य परंपरा में और द्वैतवादी उस परंपरा में आएंगे शिष्य की दृष्टि से, किंतु भागवत परंपरा में ये लोग हैं नित्य सिद्ध। इस चीज को इस रूप में समझना चाहिए। कुछ 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 लोग कहते हैं कि हम लोग माध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नहीं है, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हैं। तो माधवेंद्र पुरुष कहां से आ गए, माधवेंद्र पुरुष से महाप्रभु से भेंट हुई, तो ये महाप्रभु उस संप्रदाय में यदि यही यदि है तो मूल कल्पतरु कौन है, ये कहां से आ गए, तो हमारी परंपरा कोई बतला सकता है, महाप्रभु का कौन शिष्य था जो उनके शिष्य हुए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, कोई बतला सकता है? नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के हम संबंध में बतला सकते हैं कि ये हमारी माधवेंद्रपुरी की परंपरा में है, यहां सब कुछ ठीक है। किंतु रूप स्वरूप दामोदर को किस में लेंगे, वो कौन शिष्य परंपरा में है, सहजिया वैष्णव लोग राधा कुंड के और वृंदावन के तथाकथित वैष्णव समाज जो है बाबा जी लोगों का, कैसे अपनी परंपरा की धारा में जोड़ेगा, बतला सकते हैं स्वरूप दामोदर को कैसे लिया? इधर में रूप किसके शिष्य थे वो बतला सकते हैं, रूप गोस्वामी किनके शिष्य थे, महाप्रभु के शिष्य थे, महाप्रभु जी ने एक भी शिष्य किया, कांत फूका किसी का, जनेऊ दिया न बाबा जी वेश दिया न क्या किया, गुरु किसको कहते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है, यही भागवत परंपरा है। जिसके आचार और विचार को हम संपूर्ण रूप से आत्मसात करते हैं वो भागवत गुरु है हमारा। इसलिए मध्वाचार्य से और व्यासदेव से करीब करीब 4000 का अंतर था वर्ष का, किंतु उनके आचार विचार को समस्त ग्रहण के लिए आत्मसात किया तो उनके गुरु है वो। इसलिए रूप सनातन जी महाप्रभु के शिष्य कैसे, उनके समस्त विचारों को इन लोगों ने ग्रहण किया, याद करके उनके हृदय में जो भाव थी उसको भी उन्होंने प्रेरणा करके उनको अंदर में दे दिया। चैत्य गुरु के रूप में, साक्षात गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, सर्वस्व रूप में दे दिया। ये भागवत परंपरा। रूप जी गुरु है कि सनातन गोस्वामी गुरु है, हम लोग कहते हैं कि रूप गोस्वामी शिष्य हैं, सनातन गोस्वामी जी गुरु हैं, और सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे ये गुरु हैं, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जिनकी कृपा से महाप्रभु मिलते हैं वही तो गुरु है, तो इन्हीं की कृपा से हमारे हमको मिले, अब बतलाओ तो इतना उदार हृदय। अच्छा ये दोनों किसके शिष्य हैं? हमारी परंपरा में जो जो बाबा जी लोग कहते हैं उनकी परंपरा में कोई बतला सकता है इनकी सिद्ध प्रणाली क्या थी? सिद्ध प्रणाली नहीं? सिद्ध प्रणाली कखन थे आरंभ हलो? ओरा बोलते पारे ये सिद्ध प्रणाली, ये सब लोग तुम समझो, तुम लोग उनके बातों का उत्तर देकर के उनका निरुत्तर करो। उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, भागवत परंपरा नहीं है, शिष्य परंपरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग रूपानुग कहलाने के अधिकारी नहीं है, एकदम ऐसी भाषा और रूपानुग है ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो रूप सनातन के बाद में कृष्णदास जीव रघुनाथ, जीव रघुनाथ के बाद में किसको लिया? इसका मत तो समझ लो ये बीच में से गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि को छोड़ दिया, ऐसा मत समझो, उनको भी लिया, उन्हीं की परंपरा धारा में है। बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु जी ने स्वयं शिक्षा दिया, स्वयं शिक्षा दी, उनके अंदर में सब कुछ भर्ती कर दिया। जिन जो अपने शिष्य के हृदय में अपने भावों को लेकर के संपूर्ण रूप से भर देता है, राधा कृष्ण के प्रति जो भावना संबंध इत्यादि देता, वही उसी को तो गुरु कहेंगे ना। तो गुरु किसको कहते हैं? जो दे नहीं सका कान फूक दिया बस गुरु हो गया, ये भागवत परंपरा नहीं, ये शिष्य परंपरा ये हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि रूप सनातन इसके बाद में जीव रघुनाथ, रूप सनातन के शिष्य थे जीव गोस्वामी ना रघुनाथ दास गोस्वामी थे? रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य गुरु कौन थे? शिष्य परंपरा रघ जोंद, किंतु उन्होंने गुरु किसको माना? सिरूप मंजरी प्रथिता पुरेशमेन पुनसह नहीं पश्यसी इति इत्यादि किसको प्रणाम किया है? सिरूप मंजरी करात्कित पाद पद्म गोटेन्द्र नंदन भुजार पितमस्तिकाय हामोदतः कनक गौरी पदारविंदम संवाहनानि तनकै तव किंकरी। किसको गुरु माना? दिन रात किसके आचरण और विचार और उपदेशों से भरपूर रहते थे रूप गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी और जी गोस्वामी। उन्होंने दीक्षा दिया है कहीं उल्लेख जो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दीक्षा दिया? यह है भागवत परंपरा, शिष्य परंपरा नहीं। शिष्य परंपरा मान्य नहीं है, गुरु परंपरा किसी रूप में मान्य है, शिष्य परंपरा नहीं। इसमें असिद्ध लोग भी हो सकते हैं जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनका भक्ति शुद्ध नहीं है, किंतु भागवत परंपरा में उसी को श्री प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को नरोत्तम ठाकुर के बाद में लिया किसको? इन्हीं को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जीव गोस्वामी के बाद में लिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके बाद में नरोत्तम ठाकुर और उसके बाद में लिया चक्रवर्ती ठाकुर। इसके बाद में चक्रवर्ती ठाकुर से ब्रज विद्याभूषण है। वो लोग लिंक कैसे जोड़ेंगे? कहते हैं ये हम लोग हैं कि नरोत्तम परिवार, महाप्रभु से लिंक कैसे जोड़ेंगे? महाप्रभु का और इनका नरोत्तम ठाकुर का शिष्य परंपरा से क्या संबंध है? महाप्रभु जी ने कोई शिष्य किया नहीं, नरोत्तम ठाकुर की परंपरा में कहां से आएंगे? इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ही नहीं, कवि कर्णपुर ने और पीछे से बलदेव विद्याभूषण ने और श्री प्रभुपाद ने, इसीलिए भागवत परंपरा। इसलिए बलदेव विद्याभूषण के बाद में एक अंधकार युग आया, उसमें सिद्ध बाबा जी ये सब चलने लग गया, बुजुर्गी प्रभुपाद ने सबको काटे कर दिया, काट छाट करके साफ सुथरा करके बलदेव विद्याभूषण के बाद में ले लिया किसको? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास अजीत महाराज जी के बाद में लिया किसको? श्री भक्ति विनोद ठाकुर। यद्यपि दीक्षा नहीं दिया किंतु दीक्षा का बाप दिया, अपना सारा जो कुछ था हृदय का आभार बस गया।
ऐसा चला चली कर
परमार्थ राज्य का जितना तत्व था
भर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवतोद भटारति आस्या प्रसाद मबुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनं विदे अंगस्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्दञ्जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदय सद्दामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशित जल भुजम ध्यायेन दामोदरम भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् गुरवे गौरचंद्राय रहस्य हमरा काल के भजन रहस्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर संग्रहित हरिभक्ति विलास ये श्लोक जेन जन्म सतई पूर्वम वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। यह श्लोक हमरा अनेक बार पढ़े थी किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जे एक दिशा निर्देश करे एक गभीर तात्पर्य हमारे निकटते प्रकाश करे छेन इटा अद्भुत मने हय जो श्री चैतन्य महाप्रभु नाम प्रेम माला गाथी पराइल सवारे की रूप लैले नाम की रूपे लैले नाम प्रेम उपजय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तारी लाइन दिशा निर्देश करछन की रकम भावे ते नाम लीले नैनं गलदास्तु हवे प्रीति कृष्णे प्रति प्रीति होवे भजने ते प्रीति होवे आ प्रेम प्रकाशित होवे की रकम भावे नाम लीले जैसे भावे नाम लीले होवे ना ना तो कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तपुताना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन एजन्य रूप गोस्वामी विचार करे बोले छेन तन्नाम रूप चरिता देश कृतनानुक्रमेण रसना मनसी नियोजन तिष्ठे ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी एक जन ने बोले ओदेर अनुगत्य ते हमरा यदि थाकी ताले प्रेम होबे ए भक्ति विनोद ठाकुर रूपानुगणेर मध्य एक जन प्रधान स्तंभ विशेष करे आधुनिक एक जगते ते हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण युग समाप्ति करे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी तिनी सप्तम गोस्वामी यही सब कारण थे तिनी यही सब यदि भजन रहस्य यदि ना प्रकाशित करते हैं श्रील भक्ति श्रील सरस्वती ठाकुर अनुग्रह करे दिए हमारे ऊपर यही सब ग्रंथ प्रकाशन यदि ना करते हैं तले वही गणेशर बाहन एटा के खे फेलत भक्ति विनोद ठाकुर सब खे फेलत कुछ हमारे पाल्ला पड़त ना एजन्य एर अधिकांश श्रेय आछे हमारे श्रील प्रभुपाद ऊपर अतएव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जे लाइन निर्देश करछेन ओई अनुसार यदि हमारा भजन करी सत्य सत्य निष्कपट हो यदि भजन करी তার আদেশ নির্দেশ আমরা পালন করি তাহলে বুঝবে যে রূপ গোস্বামীর আনুগত্য লাভ হবে। শ্রীল প্রভুপাদ মদীয় গুরুপাদ পদ্মে ইত্যাদি মদীয় গুরুপাদ পদ্মে রূপানুগত্য কোথায়? এইখানে রূপানুগত্য যে রূপ গোস্বামী তার লিখিত গ্রন্থগুলিতে তিনি কৃষ্ণের পক্ষপাতী নহেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীমতীর পক্ষপাতী। রাধার সুখেতে সুখী, দুঃখেতে দুঃখী, তিনি আমাদের গুরু মহারাজ তারই আনুগত্যতে লিখেছেন ওই শ্লোক, রাধা চিন্তা নিবেশেন যস্য কান্তির বিলোপিতা। কৃষ্ণ বিরহেতে শ্রীমতী রাধিকা বনে বনে ভ্রমণ করুন, হা হুতাস করুন, মূর্ছিত হয়ে যান, এটা মহা বিপত্তির কথা। এই গোপীরা যা তার রাধার কিং করে এটা সহ্য করতে পারেন, যেরকম রূপ মঞ্জরি রূপ গোস্বামী তার সহ্য করতে পারতেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী সহ্য করতে পারেন। কৃষ্ণ যদি ডাকেন দ্বারকাপুরীতে আমি যাব না, লাখ ডাকলে আমি যাব না। আর আমি শুনি যে আমার দেশ্বরী আরাধ্যা দেবী দ্বারকাতে গিয়েছেন, তা আমি পাখা নিয়ে আর একবার ঝপ করে উড়ে গিয়ে তার সেবা করতে যাব। এ হচ্ছে রূপানুগত্য। আশা ভরেই অমৃত সেন্দুময়ী কথঞ্চিত কালো মায়াতি গমিতা কিল সাম্প্রতম হি ত্বং তচ্চেত কৃপাময়ী বিধাস্তসি নৈব কিং মে প্রাণৈ ব্রজেন ভরোরু। আমার বাকারি সঙ্গে কি প্রয়োজন, ব্রজবাসে আমার কি প্রয়োজন, আমার রাধাকুণ্ড বাস আমার কি প্রয়োজন, এই হচ্ছে রূপানুগত্য। আমাদের গুরু মহারাজ বলছেন রাধারানী যদি কষ্ট পান আক্ষেদান্বিত হয়ে যান, আর তিনি দোলেন গাছে গাছেতে বৃন্দাবনে ব্রজে ব্রজেতে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে সহ্য করতে পারে না, এই জন্য কৃষ্ণ তার অনুসন্ধান করুন। এই জন্য ইমলি তালাতে কৃষ্ণ অনুসন্ধান করতে 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 রাধা ভাবে চিন্তাতে নিমগ্ন হয়ে যে তার অঙ্গ কান্তি বিলোপিত হয়ে গিয়েছে, তিনি গৌর কান্তি ধারণ করেছে, এতে তাহাদের আনন্দ। এই ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আধুনিক যুগেতে বর্তমান যুগেতে তিনি রূপানুগর মধ্যে প্রধান। তিনি তার অর্থ করছেন, শ্লোকটা সাধারণ, যেরকম সনাতন গোস্বামীর আমরা দেখেছি ভক্তি রসায়নেতে বৃহৎ ভগবতামৃত টিকাতে, সাধারণ একটা আমাদের মনে হয় আর তাহাকে কত উচ্চ একরে ভাবেতে ব্যাখ্যা করে নিয়ে যান। কুটস্থ কুটস্থর কিরকম সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, এইসব গেলি ব্যাখ্যা যদি আমাদের গুরুবর্গ জাদি না দিত আমরা বুঝতাম। কুটস্থ মানে একরস, একরস মানে কি, এক ভাবেতে নিমগ্ন আছে তারা, এদিকে দিকে হয় না, এটাকে বলে কুটস্থ। বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীরাই এই শব্দকে প্রয়োগ করে কুটস্থ। একবার নির্বিশেষ ব্রহ্ম মধ্যে ডুবে গেল, ওরা হয়ে গেল কুটস্থ। হ্যাঁ, নির্বিকার একে বলে কুটস্থ। আরে সনাতন গোস্বামী কি করলেন, অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ সবগুলি প্রকাশন করেছেন। প্রথমে লিখলেন যে গোবর্ধনেতে কুটস্থ, গোবর্ধনের কুটে, কুট মানে পর্বত, তাহার উপরেতে স্থিত কৃষ্ণ কুটস্থ, ওইখানে যে লীলা বিলাস করছেন ওই কৃষ্ণ, বিশেষ করে ওই গোবর্ধনেতে কি প্রমদ মদন লীলা কন্দরে কন্দরে তে রচয়তে নবজুনো দন্দমস্মিন্ন মন্দম এতে কিল কল্লাতক লগ্নকস্তদ্বয়োর্মে নিজ নিকট নিবাসম দেহি। ওই কুটস্থ এইসব লীলা সাক্ষী জানি, সেই লীলা ওই রাজ গোবর্ধনেতে এ থেকে আরো বিশেষ সবগুলি অর্থ প্রকাশ করেছেন, যেগুলি নিজে নিজে ভজনের বিষয়। তো শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ওর মধ্যে প্রবেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা এই রকমভাবে সংখ্যাপূর্বক অষ্ট যুগেতে কিরকমভাবে নাম করব, এই সবগুলি বলছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যতে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এইসবগুলি অর্থ। আবার জীব গোস্বামী অগ্নি পুরাণ থেকে প্রামাণিক সবগুলি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই সব আবার মূলেতে আছেন আরো একজন গোপাল গুরু, তাহারি ওই গোপাল গুরু না, তারপরে ধ্যানচন্দ্র, তিনি এইসবগুলিকে অর্থ নিয়ে এইসবগুলি প্রকাশিত করেছে। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সবগুলিকে ক্রোড়ীভূত করে দিয়ে তিনি সুন্দর করে তাহার ব্যাখ্যা করছেন। হরে কৃষ্ণ ষোল নাম অষ্টযুগ হয়, অষ্টযুগ অর্থে অষ্টলোক প্রভু কয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাস্তকেতে তিনি এই আটটি যুগের আটটি অর্থ বলছেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণের, আর এই এক একটি শ্লোক তিনি বলতে চলে যাচ্ছেন। আদি হরে কৃষ্ণ অর্থে অবিদ্যা দমন চেতো দর্পণ মার্জনম। আর এর মধ্যে চেতো দর্পণ নিব ইটা সাধনে ভজনে দিকে, আর এই আদিটাকে নিয়ে নিব কোথায়, নিশান্ত লীলা। এই দুটাকে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে। আর ওই যে কালকে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে নিশান্তের ভজনের নিশান্ত কি, বৈষ্ণব তাকে ডেকে ডেকে উঠাচ্ছে, ভজন কর, এখন পর্যন্ত শুয়েছিলে, একটু খুমারি ভাঙছে, ঘুম অল্প অল্প একটু ভাঙছে, অন্ধকার সর্প সিংহ ভালু ইত্যাদি ওই বনেতে, ওরও যাওয়ার জন্য ভয় আছে, সূর্য উদিত হলে এইসবগুলি দূর হয়ে যায়, এইরকম হতে এইসবগুলি নিয়ে আসতে হবে এর মধ্যে। আদি হরে কৃষ্ণ, অব আদি যে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ তারপরে হরে কৃষ্ণ, তো প্রথম হরে কৃষ্ণ অর্থে অবিদ্যা দমন। অবিদ্যা দমন কি, চেতো দর্পণ মার্জনম, এটি হচ্ছে অবিদ্যা দমন। কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তার দেহ সংসার আদি দুঃখ, অবিদ্যা। আমরা কোন সময়তে কৃষ্ণ ভজন করতাম, তারপরেতে ওখান থেকে বিচ্যুত হয়ে এসেছি, এটি যেন কখনো মনে না হয়, এগুলি দেখতে হলে পরমাত্মা সন্দর্ভ এবং জীব গোস্বামীর সন্দর্ভগুলি ভালো করে অনুশীলন দরকার। জীব কোনো দিন ওখানে ছিল ওখান থেকে পড়ে গিয়েছে এটা কখনো নয়, নিত্যকালী। এই জন্য চৈতন্য চৈতন্যামৃত বলেছেন যাতে ভুল না হয়, একটা নিত্য মুক্ত আর নিত্য বদ্ধ, এটা স্পষ্ট করে নিত্যকাল থেকে ওটা বদ্ধ, মানে এখানে নিত্য মানে কি
অনাদি,
অনাদি নিত্যকাল থেকে বদ্ধ আছে, এখন পর্যন্ত যা বিতে গিয়েছে, কিন্তু সেটি শান্ত হতে পারে, স অন্ত অনাদিকাল থেকে আছে কিন্তু অবিদ্যা দূর হয়ে যেতে পারে সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায়। এই অনাদিকাল থেকে জীব অবিদ্যাগ্রস্ত, এই জন্য মায়া পিসাচি তাহাকে 84 লক্ষে জন্ম দিয়ে কোটি কোটি জন্ম থেকে শ্রীতাপ জ্বালাতে দগ্ধ করছে, আমাদের চিত্তের উপরে মালা লেগেছে। এটা কিসের দ্বারা দূর হবে, গুরুপদিষ্ট সম্বন্ধ জ্ঞান যুক্ত অনর্থ প্রায় চলে যাচ্ছে ধীরে, নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায়া, অনর্থ এখন ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে গুরু উপদেশের দ্বারা, তার ভজন পদ্ধতি শিক্ষা দ্বারা, তখন সম্বন্ধ জ্ঞান যুক্ত হয়ে যে নাম করা হবে তদ্বারা অবিদ্যা দূর হবে, অন্যথা হবে না। লাখ কেউ নাম করুক অবিদ্যা দূর হবে না। এই জন্য অবিদ্যা দমন সথার সহিত কৃষ্ণ নামে রক্ষিতন, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম করে। গুরুদেব বলেছেন যে এছাড়া কোনো উপায় নাই, তখন শ্রদ্ধা উদিতার হয়েছে। তুমি জীবের জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস, তুমি জীবে তুমি তোমার নিত্য ধর্মই হচ্ছে কৃষ্ণ সেবা, তুমি কৃষ্ণ সেবক, এখন সীমার স্বরূপ ভুলে গিয়েছ। স্বরূপম মানে কি বলছেন? সদ্ধাতু অন্য স্বরূপেণ ব্যবস্থিত মুক্তি হেতু অন্যথা রূপম স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি। স্বরূপের মধ্যে ব্যবস্থিতি হবে, এর নাম হচ্ছে মুক্তি। তো ধীরে 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 অবিদ্যা দূর হয়ে কিসের নামে, কোন নামের দ্বারা? এই অসৎসঙ্গে থেকে যে নাম কি নিজে নিজে আমি চেষ্টাতে যে নাম করব সেটি হবে না। গুরুপদিষ্ট মন্ত্র, দীক্ষা ইত্যাদি, তারপরে সাধু সঙ্গ মধ্যে থেকে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত এইরকম ভাবে যদি হয় তাহলে ভজন ক্রিয়া চাই। ভজন ক্রিয়া কোনটি? উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করে যে সাধন হচ্ছে সেটি হচ্ছে সাধন, অন্যথা হবে না। আনুকূল্যেন কৃষ্ণ অনুশীলনম, এইকে লক্ষ্য করে দিয়ে জ্ঞান কর্ম আদি অনাবৃতম আনুকূল্যেন অন্যাভিলাষিতা শূন্য, যত রকমে অভিলাষা এই সবগুলিকে ছেড়ে দিয়ে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত যখন করতে লাগলো তখন একটা অনর্থ থাকতে পারে, কিন্তু থাকলেও ধীরে ধীরে বিদ্যা বিলাস হবে। আবার এই হরে কৃষ্ণ মধ্যে নিশান্ত লীলাতে মিলন ছিল। হরে কৃষ্ণ, হরে মানে রাধিকে, হরি হরত মনহ, হরি হরতি মনহ, হরির মনকে যিনি হরণ করেন, আর কৃষ্ণ যিনি শ্রীমতী রাধিকার চিত্তকে আকৃষ্ট করে দেন, আনন্দেতে ভরপুর করে দেন, সেই হলেন কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। নিশান্ত লীলাতে মিলন, তারপরে আবার বিরহ। তো শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করলে অনর্থ দূর হলে এই সবগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ হবে। আর হরে কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ সর্বশক্তি, সাধু সঙ্গে নমাশ্রয়ে ভজনানুরক্তি, ওই যে চেত দর্পণম মার্জনম বলা হয়েছে, আমি বলেছিলাম পূর্বে যে এইটা হচ্ছে অষ্টম শ্লোকের মানে সার, এর মধ্যে আটটি শ্লোক আছে। চেত দর্পণের পূর্বে গুরুপদাশ্রয় আর তাহাকে বিসম্ভেন গুরৌ সেবা আর সম্বন্ধ জ্ঞান যুক্ত ইত্যাদি সব আছে, তারপরে ভজন ক্রিয়া হলে এইটা আরম্ভ হলো। এই জন্য ওইটাকে এর মধ্যে দেওয়া নাই। এখন দ্বিতীয় হচ্ছে ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপন, এই করতে করতে যখন নিষ্ঠা হবে, নিষ্ঠা হয়ে তারপরে যে ভজন করবে নাম, তখন ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হবে। আর অসুখ বিসুখ সংসারে দুঃখ ইত্যাদি তাহাকে স্পর্শ করবে, স্পর্শ করবে, বিচলিত হবে না, হরিদাস ঠাকুরের মতো কি অন্য অন্য গোস্বামী দেব। তারপরে ধীরে 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 আরো বাড়তে লাগলো, তখন বলছেন দ্বিতীয় নাম নমাস্তক, নাম নাম আকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্ত্বাপিতা নিমেত স্মরণীন কাল এ তাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দৈবম ইদৃশম ইহাজন নানুরাগ। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলছেন নাম হচ্ছে দু প্রকার, গৌণ এবং মুখ্য। জগন্নাথ পাতা ধাতা, ব্রহ্ম পরমাত্মা, এই সবগুলো নাম হচ্ছে গৌণ। জগৎ সম্বন্ধীয় নামগুলি হচ্ছে গৌণ। আর মুখ্য নামও আবার ক রকমের আছে। মুখ্য নামের মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য যুক্ত নারায়ণ ইত্যাদি যে নাম আছে, বিষ্ণু নাম ইত্যাদি, এই সবগুলি হচ্ছে মুখ্য মধ্যে, মুখ্য মধ্যে, মুখ্য মধ্যে গৌণ বলা যেতে পারে। গৌণ না বলে কিছু আর শব্দ বলা উচিত, ऐश्वर्ययुक्त प्रधान नाम मुख्य नाम आर तार मध्ये कृष्ण गोविंद मदन मोहन श्याम सुंदर इत्यादि नाम होच्छे माधुर्य युक्त मुख्य मधुर माधुर्य माने एखाने बुझब ऐश्वर्य हो कार नहीं हो लौकिक शब्द बंधुवत जे भाव कृष्ण प्रति आछे नरलीला जे रूप जे कृष्ण जो तो कृष्ण रूप तार मध्य नरलीला जे रूप एसे सर्वोत्तम नटव नम किशोर नटवर गोपवेश बेनुकर नरलीला अनुरूप ऐसे सर्वश्रेष्ठ रूप कृष्ण यही रूप अंतर्गत बाल्य अपौगंड किंबा अन्न पर्व निजस्व कृष्ण रूप यही खासी के सब गुली प्रकाशित यहाँ मन करबा ना जे जन्मलीला हो बाल गोपाल वही के विकसित हुई सब गुली ना मूल रूप कृष्ण स्वयं रूप यहाँ आर गुली तहार प्रकाश एर मध्य सखागणर जे नाम आखागणर जे उच्चरित संबंधित जे नाम तारपरे बासल्य भावेते जे नाम आछे आर तारपरे गोपीगणर संबंधित जे नाम आर तारपरे श्रीमती राधिका संबंधित जे नाम एर मध्य क्रमशः वैशिष्ट्य आछे एई जने सनातन गोस्वामी पाद बृहत भगवतामृते बोलेछेन एगुली वैशिष्ट्यर कथा श्रीकृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री बल्लभी जीवन करेऊ तिनि तृप्ति पेलेन ना जसोदा तनय बोले तृप्ति पेलेन ना नंद नंदन बोले ऊ तृप्ति पेलेन ना कृष्ण बोले ऊ तृप्ति पेलेन ना गोपी जखन बोलेन कि ना एक पूर्वे बल्लभी जीवन बोलें जखन कुछ कुछ एक तृप्ति होते आरम्भ कर एक तो भालो लगते लगे आज जखन बोलें राधिकेश तखन तहार संपूर्ण रूपे से आनंद होल हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत अत दूर पर्यंत होलो ना पूर्ण भी होलो ना राधा कांत नमस्तुते ऐ जन सबली नामे ते वो एक विकास रहेछे माधुर्य रहेछे ऐ जन संपूर्ण विकास ऐ कृष्णेर ऐ नाम गुली ते अघ दमन जसोदा नंद नौ नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र बृंदावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णा विद्यनेक स्वरूपे तई मम रुचि उच्च वर्धता नाम धेय नारद पीना जीवन सुधर्मी निर्जात माधुरी पूजा माधुरी पुरी एक बार से नारद पीना जीवन सुधर्मी निर्जात माधुरी पुरी निर्जात होते कि राधारमण नाम भक्ति मनोहर ठाकुर बोलछेन ये नारद बजाय बिना राधिका रमन नामे एई ते कृष्ण सर्वोत्तम प्रसन्न होबे तेनी वशीभूत हई जाबे नेई नाम के बार सुनाइल राधा नाम तखन कृष्ण बोलबे एई सबली नामे कर्मसमाधुर्य तै एई द्वितीय मध्ये बोलछेन नाम नामकारी এই রকম হাতে গৌণ মুখ্য মুখ্যের মধ্যে আবার গৌণ মুখ্য আর মুখ্যতম মধ্যে মুখ্য মুখ্য মুখ্যতর মুখ্যতম এইসব গুলি বিচার আছে তো এর মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান জীব এই বৈশিষ্ট্য গুলি বুঝে ওই সব গুলি নাম গ্রহণ করবেন সাধু সঙ্গে নামাশ্রয়ে তখন ওই সর্বশক্তি জগন্নাথের মধ্যে সর্বশক্তিও আছে নারায়ণ নামের মধ্যেও সর্বশক্তি আছে রামের মধ্যেও সর্বশক্তি আছে দ্বারকাধীশ মধ্যেও বাসুদেব কৃষ্ণের মধ্যেও আছে সর্বশক্তি কিন্তু সর্বোপরি সর্বোত্তম শক্তি যুক্ত যে নাম এই সবগুলি নাম হচ্ছে ব্রজের সম্বন্ধী আর এর মধ্যেও ক্রমশ মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য সবগুলি নামের মধ্যে আছে কিন্তু আমাদের সেই রকম হয়, মহাপ্রভু বলছেন যে অনুরাগ হলো না। এদিকে কৃষ্ণের দয়া কিরকম, কৃষ্ণের নামের দয়া কি? আপামর চণ্ডাল, কাছে সুলভ। কৃষ্ণ সুলভ নন, ব্রজভাবল সুলভ নন, কিন্তু যেরকম চৈতন্য মহাপ্রভু আপামর চণ্ডাল পর্যন্ত সকলে সুলভ হয়, তাহাদের দ্বারে দ্বারে সে গিয়ে কৃষ্ণ নামের সঙ্গে প্রেম মেখে আর তাহাদের গলাতে পরিয়ে দিয়েছেন সমস্ত ভারতবর্ষেতে সর্বত্র গিয়ে। ওই রকম হয়েছে বলছেন যে সে নাম আরো দয়ালু, কি নামের থেকে মহাপ্রভু আরো দয়ালু। মহাপ্রভুর এইরকম বলছি শ্রীকৃষ্ণ নামের অপেক্ষা। গৌর নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেন বহে আসু ধার। গৌর নিত্যানন্দের আরো একটি বৈশিষ্ট্য, এইসব অনর্থ উপগমে নামে নিষ্ঠার প্রকাশ। তখন এইরকম যদি নাম কেউ করে তাহলে অনর্থ সবগুলি ক্রমে 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 দূর হলো, আর নিষ্ঠা ওই ক্রমেতে নিষ্ঠা উৎপন্ন হতে লাগলো। নিষ্ঠা মানে চিত্তের স্থিরতা, আর ভজন ছাড়বে না। কিন্তু এক মানে বুঝতে হবে যে সে ইতি বুদ্ধি পূর্বিকা, স্বাভাবিক কবি আসে না নিষ্ঠাতে, বুদ্ধিপূর্বক এই কৃষ্ণ নাম আমি ছাড়বো না, ঘুম আসছে ঘুমাবো না, ঘুমই আসছে নাম লিতে, এই অবস্থাটা ভালো। কিন্তু এই অবস্থাটা মোটামুটি ভালো, ঘুম যত আসুক না তাহার অবশীভূত হব না, আমি টিকি বেঁধে দিয়ে আমি হরিনাম করব। এটা তো নিষ্ঠার পরিচয়, প্রাণ গেলেও আমি হরিভজন আর ছাড়বো না। কিন্তু দুঃখটা অনুভূতি হচ্ছে, কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে, তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেউ তো পারানন্দ সুখ অনুভূতি তাহার হোক হবে। যেরকম গিরিরাজ গোবর্ধনের উপর বজ্র চলছে আর তাকে মনে যে চুলকানি বেশ আরাম আনন্দ, ইন্দ্রের বজ্র পড়ছে কিন্তু আনন্দ, কেন? কৃষ্ণকে ধরে, কৃষ্ণ তাকে ধারণ করেছে। ও আজকে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষক বলে, ব্রজবাসীগণের রক্ষক বলে আমাকে আমার আমাকে ধারণ করেছেন, এই আনন্দেতে উৎফুল্ল হয়ে যায়। আর ইন্দ্রের বজ্রটাকে মনে করছে যে চুলকানি বেশ আনন্দ হচ্ছে। এখানেতে বেশি ব্যাখ্যা করলে তত বহু চলে যাবে, সংক্ষেপেতে আমরা চলি। একটা দিশা নির্দেশ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেরকম করেছেন একটু স্পষ্ট করে আমরা বলতে চাই। এইখানে কিন্তু দেখো, এখানেও হরে কৃষ্ণ, এখানে হরে কৃষ্ণ দুজনের, হরে আর কৃষ্ণের দুজনের মিলন। কখন মিলন? এটা প্রাতঃকালীন, প্রাতঃকালীনতে শ্রীমতী যশোদা দেবী কুন্দলতা প্রভৃতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিরকম হবেতে? রাধা স্নাত বিভূষী শ্রী যশোদা সমাহু সখী সঙ্গে তদগৃহে গমন তথা পাক বিরচন রাধা কৃষ্ণ শেষাসন মধ্যে মধ্যে দুহার মিলন। এই প্রাতঃকালের মধ্যে মিলন, এই জন্য হরে আর কৃষ্ণ এখানে মিলিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে ওইখানে যে নির্বাধগতি ছিল, এখন নির্বাধগতি একটু দূর হয়েছে, কিন্তু এখানেতে রাধা এবং কৃষ্ণ, হরি এবং কৃষ্ণ, হরে এবং কৃষ্ণ, হরা এবং কৃষ্ণ দুজনের এখানেতে মধ্যে মধ্যে দুহার মিলন। শ্রীমতীর তিনি রান্না ইত্যাদিতে আছেন আর তিনি তাহাকে দুজনের সঙ্গে মিলছেন, ধনিষ্ঠা ইত্যাদি কুন্দলতা ইত্যাদি সেখানেতে মিলন করাচ্ছেন। এখন তৃতীয় প্রহর আসলো, তৃতীয় বিশুদ্ধ ভক্ত চরিত্রের সহ কৃষ্ণ নামে নিষ্ঠা করে অহরহ। এখন তৃতীয় হরে কৃষ্ণ গেল, এখন হরে হরে রাম আসলো না, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এখন ওই যে হরা যে ছিল হরে এখানে নাই, ওখানে হরে আর হরে ওখানে মিলেছে, কিন্তু এখানে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এখানে কৃষ্ণ একলা অনুভব করছেন, অংশীমতী একলা অনুভব করছেন, দুজনের এখানে মিলছে না। কোন সময়েতে? পূর্বাহ্নেতে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, কৃষ্ণ গোচারণেতে চলল, কৃষ্ণ গোচারণেতে যে সখাগণের সঙ্গে তিনি চললেন। এরা দুর্গত ভাবেতে দেখে অত্যন্ত বিরহিত হয়েছে, চলে গেলেন ওখানেতে, ওখানে যে গো চারণ করলেন, চিন্তা রয়েছে যে কিরকম মিশব। এই জন্য তৃতীয় পাহাড়ের শেষের দিকে যখনই মধ্যাহ্ন যখন আরম্ভ হলো, তখন কিছুক্ষণ গরু চারণ পরে ফের আবার তাহাদের মিলন হলো। তখন হলো কি? হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এরপরে হইল হরে হরে। হরে মানে হরা, আর হরে হরে মানে কৃষ্ণ। এই দুজনের ওখানেতে মিলন হলো, মধ্যাহ্নিক লীলা। এই হচ্ছে রাধা কুণ্ডের লীলা। এখন সাধনের মধ্যে আমরা আসি। এখন গুরুপদিষ্ট মন্ত্র, মহামন্ত্র, এটাকে শুদ্ধভাবে আশ্রয় করে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত নিষ্ঠার সহিত, যখন ওই ব্যতীত হয়ে গেল প্রথম শ্রদ্ধার সময়, যখন নাম করতে লাগলো, তখন উৎসাহময়ী ঘনতরলা বুড় বিকল্পা তরঙ্গরঙ্গিনী বিষয় সঙ্গরা নিয়মক্ষম, এইসব দূর হয়ে গেল। তখন যত পরিমাণে নিষ্ঠা তাহার পরিপক্ক হচ্ছে, তাহার রুচির উদয় সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। একটা শেষ হয়ে গেল, তারপরে একটা শেষ আরম্ভ হবে তা নয়। যত পরিমাণেতে শ্রদ্ধা পরিপক্ক হচ্ছে, তত পরিমাণে নিষ্ঠা, আর নিষ্ঠা যত পরিমাণেতে পরিপক্ক হচ্ছে।